نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى آج هم سورة آل عمران آيات نمبر 156 سے 171 تک کریں گے. پچھلے سبق سے ہم دیکھ رہے ہیں تبصرہ غزوہ احد پر، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک بہت اضطراب بے چینی کی کیفیت ہو گئی، اور ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر تیار کیا کہ زندگی اور موت کسی بھی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس پہ ڈیپینڈ کر کے کوئی بھی اپنا دین نہ چھوڑ دے. اگر اپنا دین چھوڑے گا تو پھر وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. یہ دین تو وہ ہے جس پہ اللہ کی شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جزا دے گا، اور یہ دو دفعہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور سَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. ہم صبح میں بھی جب اٹھتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، ایک یعنی جو صبح شام کے اذکار ہیں ان میں ہم کہتے ہیں اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اتنی پیاری یہ دعا ہے، اس میں اتنا شکر ہے کہ اللہ میں صبح کے وقت میرے اوپر جو بھی یا تیری کسی مخلوق میں سے کسی پہ جو بھی نعمتیں ہوئی ہیں وہ تیری طرف سے ہی ہیں. وحدک لا شریک لک، اللہ تو یہ اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. فلک الحمد ولک الشکر، تیرے لیے ساری تعریف ہے اور سارا شکر تیرے لیے. شکر گزاری کی توفیق مل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان شکر کرنے والا ہو جائے، اس کو نعمتیں یاد رہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد رہیں. پچھلے دنوں میرے یہ انگوٹھے میں انفیکشن ہو گیا تھا رائٹ ہینڈ کے، تو پورا انگوٹھا یعنی کام کرنے کے قابل نہیں تھا. اب میں نے اس وقت ریئلائز کیا کہ اللہ اس نعمت کی طرف شاید میں نے کبھی توجہ نہ کی ہو کہ انگوٹھا کتنی بڑی نعمت ہے، کہ انسان اپنا اس کا پورا ہاتھ صحیح ہے، ساری انگلیاں صحیح ہیں، لیکن آپ کا ایک انگوٹھا نہیں کام کر رہا نا. آپ نہ کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، آپ دیکھیں نا، کوئی چیز پکڑیں گے تو کوئی کام کریں گے نا. پینسل بھی پکڑنی ہے تو لکھیں گے، برتن پکڑیں گے تو دھوئیں گے، کھانے میں چمچ چلائیں گے تو پکڑیں گے تو چلائیں گے، کپڑے پہننے ہیں تو کپڑے کو بھی پکڑنا پڑے گا. انگوٹھے کے بغیر کوئی چیز پکڑی ہی نہیں جا سکتی. ان دو انگلیوں میں چاہے آپ کتنا بھی پکڑنے کی کوشش کریں، اس طرح سے نہیں پکڑی جاتی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بھی مجھے ایک سبق بتایا کہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے جس پہ شاید تم نے نہ غور کیا ہو. بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کی شکر گزاری بھی ہمیں اس وقت میں دینا جس وقت نعمت موجود ہو. اللہ نہ کرے کہ نعمت چھن جائے تو پھر اس کی قدردانی آئے. تو اسلام بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ صرف الفاظ کی بات نہیں ہے، اس نعمت کا شاید ہم اس طرح ریئلائز نہیں کرتے، اور ہم اس کو بولتے ہیں کہ بھائی اسلام ایک نعمت ہے، ہاں بھائی ایمان بڑی نعمت ہے، ہدایت بڑی نعمت ہے، چلو یہ ایک ڈائلاگ ہمیں آتا ہے، ہم بول دیتے ہیں. لیکن شاید اگر آپ کبھی کمپیریزن کر کے دیکھیں ایک اس انسان کے جس کے پاس اسلام کی، اس دین کی نعمت نہیں ہے، اور جس کے پاس یہ نعمت ہے، دونوں بہت بہت ڈفرینٹ ہیں، ان کی زندگیاں بہت ڈفرینٹ ہیں. تو شکر گزاری اس پہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے. پھر ہم نے دیکھا نبیوں کے ساتھ دینے والے کیسے لوگ ہوا کرتے تھے نا، اور ان کی دعائیں کیسی ہوتی تھیں. تو یہ دعائیں ہمیں بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ ثابت قدمی ہمیں بھی چاہیے. हमें भी मगफरत चाहिए। और कोई भी बड़े बड़े काम करके, चाहे वो देखे इन लोगों ने तो नबियों के साथ दिए, उनके साथ मिलके लड़े, फिर भी ना मुतजलजल हुए और ना ही उनके अंदर कोई तकब्बुर आया कि हम तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हमने कितनी बड़ी नेकी कर दी है। फिर अल्लाह ताला ने हमें गाइड किया है कि कभी भी काफरों की बातों को गौर से सुनना और उनके ऊपर चलना ये मत करना, वरना तुम्हारा दीन ही चला जाएगा, तुमसे कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। फिर हमें पता चला कि जो उहद में भी शिकस्त हुई, तो बताया गया कि अल्लाह ने तो तुम्हारी मदद की थी, मगर क्या वजह हुई उस शिकस्त की वो बताई गई है, और क्यों ऐसे हालात आते हैं वो बताए गए। लेकिन अल्लाह मोमिनों को छोड़ता नहीं है, उनके ऊपर किस तरह अल्लाह ताला ने एक ऊंग भेज दी जिससे वो उनको थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया, और एक ग्रोह बेचैन ही रहा, वो तो ये सोच रहे थे आज हमने बचना नहीं है, बस कोई कीमत हो बस हम बच जाएं किसी तरह। ये मुनाफिक नहीं ना, मुनाफिकाना रवैये होते हैं। और फिर आप ऐसे लोगों की फिर देखते भी हैं कि उनकी बातें कैसी होती हैं, वो भी हमें बताई गई। इसमें मैंने आपको बताया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई थी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये फरमाया था कि आपके ऊपर दो मौतें कभी और कभी जमा नहीं होंगी, यानी जो आपको मौत आ गई है बस वही है, अब इसके बाद नहीं आपको मौत आनी। तो शायद कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, तो बस इसका मतलब ये है कि यानी जो मौत आनी थी वो एक ही मौत है, इसके बाद कोई और मौत की तकलीफ से आप नहीं गुजरेंगे। तो आज की भी आयात कंटिन्यूएशन है उसी की, उन्हीं बातों की जो उहद के ऊपर तबसरा है। देखिए अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कि एक तसल्ली दी है मुसलमानों को, बल्कि उनकी तरबियत भी की है, उनको ट्रेन भी किया है, बीच बीच में उनको हिदायत की बातें भी बताई गई हैं, फिर उनको उनकी गलतियों की निशानदेही भी की गई है ताकि वो अपनी इसलाह कर लें। तो आज के रुकू में हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं बोलनी होती, नहीं कहनी होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किन मकासिद के लिए दुनिया में भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, और शुहदा के जो मकाम और मर्तबे हैं वो कैसे हैं। तो देखते हैं आयत नंबर 156 से, या अय्युहल्लदीना आमनू, ए ईमान वालों, ताकीद ईमान वालों को की गई है कि अल्लाह ताला की बातों को सुनने में ईमान वाला बहुत बहुत चुस्त होता है, बहुत अल्लाह ताला की बात को गौर से सुनता है कि मेरे रब ने क्या फरमाया, वो ईमान जो लेकर आया अल्लाह पे, तो ईमान वाले की ये सिफत होती है। हम भी ईमान वाले हैं, जब या अय्युहल्लदीना आमनू आए तो हमने गौर से सुनना है कि अच्छा अल्लाह ताला ने कोई बात कही होगी किसी चीज़ का, आप देखेंगे आगे या तो हुक्म दिया गया होगा या किसी बात से मना किया हो गया होगा। तो जब या अय्युहल्लदीना आमनू आए आपने अलर्ट हो जाना, आपने कहना है कि अच्छा फिर क्या क्या बात मुझे बताई जा रही है। ईमान कह के और तमाम ईमान वालों को मुखातिब किया गया और यहाँ पर किसी बात से मना किया गया, और वो क्या बात है, ला तकूनू कल्लदीन कफरू, ना तुम हो जाओ उन लोगों की तरह जिन्होंने कुफर किया, उनकी तरह ना हो जाना कि क्या करते हैं वो, किस चीज से मना किया जा रहा है, कौन सी काफरों की मुशाबहत से मना किया जा रहा है। वैसे तो काफरों की मुशाबहत वैसे ही नहीं करनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिस कौम की भी मुशाबहत करता होगा वो उसी में से होगा। तो हम देख लें कि हम किस किस की मुशाबहत करते हैं, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, किन की मुशाबहत करते हैं, गैर मुस्लिमों की, उनकी बहुत हमें शौक है उनके जैसे बोलने का, उनके जैसे पहनने का, उनके जैसे दिखने का, उनके जैसे उठने बैठने का, उनके जैसे मामलात करने का, जब सारा कुछ ही उनके जैसा ही है तो फिर उन्हीं से उठाए जाएंगे। और अगर मोमिनाना कैरेक्टर है, मोमिनाना बोल चाल है, मोमिन की बोल चाल में और कैरेक्टर में और दिखने में और तरीकों में ना बड़ा ही फर्क है, बड़ा फर्क है उसकी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं उनमें और दूसरे के अल्फाज में फर्क है। हम बाज दफा जब ये हदीस सुनते हैं ना कि उनसे मुशाबहत नहीं करनी, तो हमारे जहन में सिर्फ कपड़े आते हैं कि कपड़े उनके जैसे नहीं पहनने, या उनके फेस्टिवल्स की तरह के हमने नहीं करने, हमने नहीं क्रिसमस मनानी, या हमने नहीं ये करनी, वो भी ठीक है, मगर ये सिर्फ मुशाबेहत कपड़ों में नहीं है, रस्मों रिवाज में नहीं है, भूल चाल में भी है जिससे मना किया गया। और यहाँ पे ऐसी ही बातें जो कि काफिर मुंह से अदा करते हैं उनसे मना किया जा रहा है। तो बातों में भी मुशाबहत नहीं करनी, जिस किस्म के अल्फाज वो कहते हैं आज तो मतलब जैसे जो वो बोल रहे होते हैं गंदे अल्फाज, बगैर सोचे समझे हम भी जुबानों से वही निकालते हैं, वही गालियां, वही जब स्ट्रेस में हो तो उसी किस्म के अल्फाज। मैं अब यहाँ पे बोलूंगी नहीं कि क्या अल्फाज हैं, आप सबको पता है जब इंसान झुंझलाता है या अचानक कोई चीज आ जाती तो मुंह से क्या निकलता है, वही जो वो कहते हैं इन्ना लिल्ला उसके मुंह से निकलेगा जो मोमिन है। मोमिन में और इनमें फर्क है ना, तो मोमिनाना जिंदगी गुजारे, ईमान वाले के मुंह से वो वाली चीजें नहीं निकलती जो उनके मुंह से निकलती, उनके मुंह से गंदी बात निकलती है, ईमान वाले के मुंह से इन्ना लिल्ला निकलता। ठीक है, तो हमें आज तक ऐसी तरबियतें अनफॉर्चुनेटली मिली नहीं है, ना स्कूलों में बताया गया, ना उस तरह से माँ बाप ने बताया कि क्या कहना है जब कोई मुश्किल एकदम आ जाए, जब एकदम कोई गाड़ी के आगे आ गया है, जब एकदम कोई ऐसा हादसा हुआ है तो क्या मुंह से बोलना है, या जब कोई काम करने लगना है तो क्या बोलना है, जब अच्छी चीज देखनी है तो वाओ नहीं कहना बल्कि कहना है सुभान अल्लाह, जब अच्छी चीज कोई मिले तो तब क्या कहना है, और तब डांस नहीं शुरू कर लेना जब तब अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। तो मतलब मोमिन के ना एक तरीका बोलने का भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे एक बातों का ही बताया गया कि बोल में भी मोमिनाना कैरेक्टर होना चाहिए तुम्हारा, काफरों की तरह मत बनो। क्या करते थे वो, वकालू लि इख्वानिहिम, उन्होंने कहा अपने भाइयों से, इजा दरबू फिल अर्दी, जब वो चले जमीन में, जब उनके भाई जमीन में कहीं जाते थे यानी सफर को उनके भाई करते थे, भाई कौन, ये जरूरी नहीं को सके भाई बताया जा रहा है, मतलब है सके भी हो सकते हैं, अपने कबीले के भी हो सकते हैं, बरादरी के भी, रिश्तेदार भी, वैसे भी जिनके साथ ताल्लुकात, कोई तिजारत के हैं, कुछ उनके भाई बंद जिसको कहते हैं, हमारे भाई बंद हैं, तो उनका कहते थे जब भी वो सफर करते थे, औकान गुज़्ज़न, या वो कोई जंग में लड़ने के लिए लड़ने वाले होते थे तो क्या कहते थे, इनकी बातें क्या होती थी कि अगर वो फौत हो गए सफर में, कोई एक्सीडेंट हो गया या लड़ने में कहीं मर गए, तो वो कहते थे लव काना इंदना मा मातू व मा कुतिलू, अगर हमारे पास होते ना तो ना मरते और ना कत्ल किए जाते। ये खास तौर पे ओहद के तनाजुर में इस बात को देखिए, वो वैसे भी ऐसे करते थे, मगर यहाँ पे कफरू किसको कहा गया, यहूदी और तो कोई भी ऐसे नहीं थे वहां पे, यहूदी थे मदीना में, मुशरिकीन मक्का तो नहीं थे, कौन है ये जो बात कहने वाली है, ये मुनाफिकीन ने कहा था, और उनको कहा गया अल्लदीन कफरू। क्यों मुनाफिकों को क्यों कहा गया, वो तो जाहिरन तो इस्लाम ही लाए हुए थे ना, जाहिरन तो उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ था, नमाजें भी पढ़ते थे और कहीं कहीं जंगों में भी शामिल हो जाते थे, तो क्यों कहा गया, इसलिए कि दिल से तो काफिर थे ना, मुंह के बोलों को अल्लाह ताला उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करता जब तक दिल ना साथ हो। ये मुंह के बोलों से हम इंसानों को तो धोखे दे सकते हैं, ये हम मुसलमान हैं या हम ऐसे हैं या हम बड़े नेक हैं, अल्लाह ने बोलों पे थोड़ी जाना है कि कौन कितने ज्यादा डायलॉग बोल सकता है, अल्लाह ताला ने तो देखना है दिल कैसे हैं। तो इनकी चूंकि मुनाफिकीन के दिल काफिर थे, जुबाने इस्लाम का दावा करती थी, तो उनको काफिर कहा गया यहाँ पे, तो इन काफिरों की तरह ना हो जाना, यानी इन्होंने क्या किया था, ये मुनाफिकीन ने क्या कहा था कि जब आप देखें ना, मैंने आपको बताया था कि उहद में समझ लें 70 जब शहीद हो गए सहाबा कराम, तो घर घर ऑलमोस्ट सफ़े मातम बिछी हुई है, किसी का कोई भाई है, किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, किसी का बाप है, किसी का कोई है, तो आपस में तो सारे रिश्तेदार ही थे, उनमें जब जाहिर है इतनी अम्बात हुई तो जब सब लोग बैठते हैं तो मुनाफिकीन ने क्या कहा, उन्होंने कहा, वो वैसे भी ये कहा करते थे और इस वक्त तो काफरों की तो ये बातें होती थी, ईमान वाले की नहीं होती, मगर देख लें जो मुनाफिक है वो फिर कितना अल्लाह के ऊपर उसका भरोसा होता है। वो कहने लगे कि वो तो अगर हमारे पास होते ना तो ना मरते तो ना कत्ल किए जाते। अगर वो ना जाते, यानी देखें अब यानी हमारे पास होते मतलब क्या कि वो ना जाते, वो इसमें शामिल ना होते, तो फिर क्या होता, वो कत्ल भी ना होते और वो मरते भी ना। यानी गोया ऐसे लगता है कि जिंदगी और मौत उन्होंने अपने हाथ में समझी हुई थी कि हमारे पास होने से मौत नहीं आनी थी उनको। लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फी कुलूबिहिम, ताकि कर दे अल्लाह इसको हसरत का बायस उनके दिलों में, ताकि अल्लाह इसको हसरत बना दे, वो हसरत ही करते रहे, वो इसी तरह कह कह के कुड़ते रहे। क्योंकि जब तक इंसान ऐसी बातें करता रहता है उसको चैन नहीं आता। हसरत क्या होती है? हसरत में तीन चीजें होती हैं, आप लिख लें, गम, पछतावा और बेबसी। यानी इंसान गमगीन भी होता है, उसके अंदर एक बेबसी भी फील हो रही है और उसको एक नदामत भी होती है, पछतावा भी होता है, उससे मिलके हसरत बनती है। तो अल्लाह ताला इस तरह से फिर जब ऐसी बातें बोलते हैं तो अल्लाह हसरत पैदा कर देता है कि ये कहते रहते हैं हाय काश ये ना होता, हाय अगर ऐसा ना होता, हाय। हम अपनी जिंदगियों में भी देखें, लास्ट टाइम जब भी आप किसी की भी ताजियत के लिए गई हूं, किसी की भी फौतगी पे गए होंगे, तो वहां पे आपने कभी नोटिस किया, खास तौर पे हादसाती मौत या बीमारी से किसी की मौत आई हो, तो लोग क्या कहते हैं आमतौर पे, क्या बातें होती हैं? अगर ऐसे ना होता, वो अगर हमारे घर ना आते हैं तो हमें ये बीमारी ना लगती, तो ये फौत ना होता, अगर ये वहां ना जाता, हाय काश मैं रोक लेती, हाय काश ये इसको मैं गाड़ी ना देती, आए काश किसी तरह कोई ऐसा हो जाता, मैं इसको ये चीज लाने को ना कहती, ये बाहर निकला, अगर ये बाहर ना जाता तो ये ना होता। ये जो अकीदा है ना, ये ऐसा ख्याल करना, ये असल में इंसान के लिए शैतान का दरवाजा खोल देता। क्योंकि हदीस में भी आता है कि अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो ये मत कहो मैं अगर ये कर लेता तो ये हो जाता, काश मैं ये कर लेता, बल्कि कहो कद्दर अल्लाह मा शाअ अफ़अला, अल्लाह की तकदीर थी ये, अल्लाह ने तकदीर में लिखा हुआ था मा शाअ अफ़अला, जो उसने चाहा कर दिया। या आपने यहाँ पे रुकना है तो मा शाअ अफ़अल, जो उसने चाहा हो गया बस। ये कलमा हमने याद करना है, क्या है कलमा, कद्दर अल्लाह मा शाअ अफ़अल, अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिखा हुआ था। और इसमें बड़ी हिकमत है ये कह देने में, क्योंकि जितना इंसान कहेगा ना हाय काश ऐसे ना होता, हाय काश ये ना होता, हाय हम उस अस्पताल में ना लेके जाते, हाय काश ये डॉक्टर ना मिलता, हाय काश फलाना डॉक्टर आ जाता, अगर मैं इस मुल्क में ना आती, अगर ये ना होता, अगर वो ना, तो क्या होगा बताएं। हसरतें हसरतें और हसरतें, और ऐसे लोग फिर इस हसरत से निकल ही नहीं पाते, वो डिप्रेशन में रहते हैं। बाज दफा लोग मुझे कहते हैं कि जी फलां है उसका कोई फौत हो गया है और वो डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे, वो अभी तक उस गम से ही नहीं निकल पा रही, वो अभी तक उनसे उनको सबर नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि हसरतें बहुत होती हैं। जब इंसान कहते ना अल्लाह ने तकदीर में ऐसा ही लिखा था और ऐसा ही होना था, ऐसे नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो फौत हुआ, ऐसे नहीं कोई कोई बीमारी लगी तो वो फौत हुई, उलट कर लें इसको, असल में ये है कि मौत आनी थी इसलिए एक्सीडेंट हुआ, मौत आनी थी इसलिए उसको बीमारी लगी, मौत आनी थी इसलिए वो वहां गया। हमने पहले भी पढ़ा है ना कि जहां पे इंसान की मौत लिखी होती वो उस जगह पर खुद चल के चला जाता। तो किसी के जंग में जाने से मौत नहीं आ जानी, किसी के किसी गाड़ी में या जहाज में बैठने से मौत नहीं आ जानी, लोग रोज बैठते हैं, मगर जिनकी लिखी भी अल्लाह ने वो उस वक्त वहां बैठ जाएंगे, जहां पे पहुंचना है वो उस जगह पे पहुंच जाएगा। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्र किया है वो किसी के टाले से टल नहीं सकता, ना कोई जादू करके आपको मार सकता है। आपकी मौत लिखी थी इसलिए उसने जादू कर दी, मौत लिखी थी इसलिए बीमारी भी लग गई। वही बीमारी औरों को लगती है, कोई उससे सरवाइव कर ले रहे होते हैं लोग, बच रहे होते हैं लोग, ये क्यों मरा? इसलिए कि मौत आनी थी ना, इसलिए बीमारी लगी। मौत आनी थी इसलिए ये हादसा हुआ। तो थोड़े से अपने ना जहन, अपनी माइंड सेटिंग सही करने की जरूरत है। जब हम देखते हैं ना किसी को, मसलन किसी को कैंसर हो गया, तो बस आए हाय, अब तो इस कैंसर लगता है कि मौत ले आएगा, वो तो कोई ताकत नहीं रखता। यही तो शिर्क का दरवाजा खोलता है, यही से तो शैतान अकीदे में खराबी डालता है कि ये चीज भी मौत दे सकती है। नहीं, वल्लाहु यहयी व युमीत, अल्लाह है जो जिंदा करता है और मौत देता है। तो साफ बता दिया गया, कोई चीज नहीं मौत ला सकती। इस अकीदे को पुख्ता होना चाहिए हमारे अंदर, ये यकीन होना चाहिए हमारे अंदर, कोई चीज नहीं मौत ला सकती। और कदर अल्लाह की, यानी तकदीर, अल्लाह ने जो लिख दिया तकदीर में, आपको पता है तकदीर हमारे ईमान में से, ईमानियात में से जो छठा ईमान है वो तकदीर पे है। इसके बगैर ईमान नहीं है। अल्लाह पे ईमान, रसूलों पे ईमान, किताबों पे ईमान, फरिश्तों पे ईमान, आखिरत के दिन पे ईमान, और छठा ईमान क्या है? तकदीर पे ईमान। उसकी तरफ तो शायद कभी सोचा ही नहीं होता। फिर क्यों तकदीर के फैसलों से इंसान नाला रहता है, नाराज होता है और उसके ऊपर बुरा मानता है, और उसको लगता है अगर मैं ये कर लेती तो ये ना होता, अगर ये हो जाता तो ये ना होता। यानी तो फिर तो आप ही खुदा बन गए ना, अगर मैं ये कर देती, यानी ये मेरे अंदर ही इतनी पावर है। नहीं, सारी पावर अल्लाह के पास है। अगर मगर मत करो, अगर मगर हसरतें लाता है, अगर मगर गम, बेबसी और पछतावे लेकर आता है। बल्कि जब इंसान, देखिए जैसे हजरत अली ने फरमाया था कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना, यानी जब मेरा इरादा टूटता है ना तो उससे पता चलता है कोई रब है ना। और ना इंसान परफेक्ट प्लानिंग करता है, परफेक्ट वो हर चीज अपनी जगह पे, लेकिन वो वैसा नहीं होता, कुछ और ही हो जाता है, तो पता चलता है एक रब की जात है, कोई और है जो पावर है। मैं पावरफुल नहीं हूं, मैं बेबस हूं, और अल्लाह ताला के पास सारा जोर है। तो इसलिए ये हसरतें करते रहना और इसी के ऊपर गम मनाते जाना, ये काफिराना सोच है और काफिराना तरीका है। इससे मना किया गया है और हमने इससे मना होना है। कभी आइंदा किसी की डेथ पे ये नहीं कहना अगर मगर और काश। देखिए काफिर ऐसे कहते ना तो बेचैन रहता है, मोमिन तकदीर पे ईमान ले जाता है, तो उसको सुकून है। इसलिए उसको कहा गया ठीक है 3 दिन सोग मनाओ, उसके बाद नॉर्मल हो जाओ। उसके बाद नहीं कि हर साल आप उस डेट पे सोग मनाने बैठ जाएं, हर साल उस महीने में आप सोग मनाएं, या आप अब हम महीनों महीनों सोग ही मनाते रहें, या अब आप पहली और दूसरी ईद ही ना करें क्योंकि आपका सोग ही चल रहा है। नहीं, कहा गया 3 दिन सोग है, उसके बाद नॉर्मल रूटीन पे आओ। हाँ, रो सकते हैं, रोना कभी भी इंसान को आ सकता है, जाहिर है ये नेचुरल बात है, इसे मना भी नहीं किया गया। कोई जानी माली नुकसान किसी का भी कुछ होता है तो गम तो होता है, और ये फितरी बात है। तो कुछ भी सुपर नेचुरल नहीं, आपसे कोई एक्सपेक्ट किया गया कि आपने कभी गम ही नहीं, गमगीन ही नहीं होना, आपको कभी गम होना ही नहीं चाहिए, या आपको रोना ही नहीं आना चाहिए। नहीं, रो सकते हैं, बल्कि आगे आएगा ना फल, यदहाकु कलीलम वल यबकु कतीरा, चाहिए कि वो हंसे कम और रोएं ज्यादा। ये बात बात पे हंसना कहीं तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। रोना चाहिए क्योंकि रोने में भी इंसान का दिल नरम होता है, बहुत ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है, रोने से दिल जिंदा होता है। तो वैसे भी अल्लाह के आगे रोना चाहिए, गम पे भी कोई रो सकता है, मुसीबत पे भी रो सकता है, मगर फिर ये ऐसी हसरत ना बन जाए कि इंसान को जीने की तरफ आने का कुछ रह ही ना जाए, उसकी जिंदगी ही बस खत्म हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो कब मौत का वक्त कब लिख दिया जाता है? जब इंसान अपनी माँ के पेट में होता है उस वक्त तो लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद ये कहना इस चीज से हुआ वो हुआ, अगर ये ना होता अगर वो ना होता, कैसे आप कह सकते हैं? वो तो उस वक्त ही लिख दिया गया था। वल्लाहु बीमा तअमलून बसीर, अल्लाह ताला जो भी तुम करते हो वो देखने वाला है। कौन क्या कर रहा है, किसके मरने पे क्या बोलता है, कैसे रहता है, क्या उसके डायलॉग हैं, और वो किस किस्म की एटीट्यूड, किस किस्म का बिहेवियर दिखाता है, इसी में तो टेस्ट होता है ना। जिंदगी किसी अस्पताल में मिलती है, ना मौत किसी एक्सीडेंट से हो सकती है, ना जिंदगी किसी डॉक्टर के हाथ में है, ना मौत किसी बीमारी में है। ये सब मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, ये किसी इंसान के हाथ में अल्लाह ने नहीं दिया। और तकदीर पर ईमान यही है, जिंदगी मौत सेहत बीमारी रिज्क ये सब अल्लाह ताला के फैसले हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब इंसान कभी कोई अपने लिए इंतजाम ही ना करे, या कभी रिस्क के लिए हाथ ना हिलाए, या कभी नुकसान से बचने की कोशिश ना करे। नहीं, करना है, कभी अपने फायदे के लिए हाथ पैर ना हिलाए, फायदे के लिए भी कोशिश करनी है, मगर ये चीजें जो यहाँ पे बताई गई इनसे परहेज करना है, और अपना ईमान पुख्ता करना है कि मैंने मुनाफिकों वाली बातें नहीं करनी। क्या इससे अल्लाह ने मना कर दिया? देखिए यहाँ पे कौन मना कर रहा है आपको, ला तकूनु कल्लदीन कफर, मोमिनो तुमने नहीं ऐसे बनना जैसे वो है। माँ बच्चे को समझाती है ना, बेटा आपने उन बच्चों की तरह नहीं बनना, जैसे वो बच्चे बातें करते हैं जैसे वो करते हैं। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी शफकत और मेहरबानी, वो वाकई रऊफ और रहीम है, उसकी कितनी बड़ी मेहरबानी कि वो ये भी सिखाता है कि देखो ऐसी बातें ना करो, कि ऐसी बातों का अल्लाह तो कोई नुकसान नहीं है, उसको क्या नुकसान है, आप बोलते रहे जो मर्जी बोलते रहे, उसको तो किसी के शिर्क से भी कोई नुकसान नहीं है, तो ये बातें उसको क्या नुकसान देंगी। लेकिन पता है नुकसान किसको है? इंसान को खुद होता है, क्योंकि आप कह के देखें ऐसी बातें, वो गम जो होगा वो इतना ज्यादा डीप हो जाएगा ना, हाय अगर काश ऐसे, हाय अगर ऐसे होता, हाय अगर मैं ये ना फैसला करती, आप देखें वो आपको बिठा के रख देगा, वो गम उठने नहीं देगा, फिर इंसान डिप्रेस रहेगा। तो इससे निकलना है, अल्लाह नहीं चाहता कि मोमिन डिप्रेशन में रहे और अपनी कीमती जिंदगी को गम में ही गुजार दे। 3 दिन तक अलाउड है तुम्हें, उसके बाद इससे निकलो, हसरते मत करते रहो। ठीक है, कितना बड़ा सबक हमें बताया गया, ये अच्छी तरह समझ आ गई है बात सबको, अच्छी तरह समझ आ गई कि नहीं? अगर कभी हम में से किसी को भूल जाए तो एक दूसरे को हमने रिमाइंड कराना है कि देखा हमने वो आयत पढ़ी थी ना, तो हमने ये नहीं बोलना, हमने ये बोलना है कद्दर अल्लाह मा शाअ फाल। ठीक है, इंशाल्लाह। और जब किसी फौत की भी मजलिस में जाएं तो वहां पे भी आपको पता है कि हर तरह के लोग आए होते हैं, जाहिर है जिनको नहीं भी दीन का इल्म होता वो भी होते हैं, वहां पे भी कोई ये ऐसी बात करे तो आपने अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर किया है, यही तो है कि हमने इस तरह से पढ़ा था और ऐसी ऐसी अल्लाह ताला ने इसको से कुरान में मना किया है, तो हमने ये बातें नहीं करनी। ठीक है, तो हमने अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का पढ़ा था ना, तो अपने लिए सिर्फ नहीं ये चीज, बल्कि जाहिर है जिंदगी मौत हमारे साथ लगी भी है, तो ये भी चीजें चलेंगी, कई जगह पे आप जाएंगे वहां पे ऐसी बातें होंगी, तो ऐसी चीजों के ऊपर उनको बताना है कि ये अल्लाह की नाराजगी का बाइस बनता है, ये शिर्क का दरवाजा खोल देता है। इसका मतलब हमें गम भी होना तो सोच समझ के जुबान से बातें निकालनी है, ये नहीं है कि गम है तो जो मर्जी बोलते जाए आज सब बोलना जायज हो गया। हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है ना कि भाई जो मर्जी बोलो, अब इस वक्त इसके ऊपर गम तारी है बस इसको बोलने दो। और इसी वजह से आप देखें ऐसी बातें कितनी कॉमन है। ये असल में बातें जुबान से इसलिए निकलती हैं कि बीच में ना अकीदे में मसला है, अकीदा में पुख्तगी अगर ये हो ना, वल्लाहु यहयी व युमीत, तो फिर जुबान से नहीं ऐसी बातें निकलेंगी। तो आप तो नहीं कहेंगे कि जी फलाने ने ये जादू कर दिया तो हाय फलाना मर गया, हाय फलाने ने ऐसे कर दिया तो ये हो गया, फलाने ऐसे किया, फिर तो इसका मतलब सारा लोगों के हाथों में और बीमारियों के हाथों में ही मौत है और एक्सीडेंट्स के हाथ में ही मौत है, फिर ये सारी चीजें ही हैं जो मौत देती हैं। अल्लाह ताला हमें इस तरह की बातें कहने से महफूज रखे। मोमिन का अकीदा जिंदगी और मौत के बारे में कितना डिफरेंट है, नफा और नुकसान के बारे में कितना डिफरेंट है। वला इन कुतिल तुम फी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम। अब देखें अल्लाह ताला किस तरह समझाता है ना, कुरान पाक जैसे इंसान को तसल्ली देता है ना, वैसे कोई और तसल्ली नहीं दे सकता, वैसे कोई और समझा नहीं सकता। लोग जितना मर्जी समझाएं इस तरह नहीं समझा सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा अगर तुम कहते ना हाय काश वो ना मरते, वो ना वो होते इसके, लेकिन ये सोचो वला इन कुतिल तुम फी सबीलिल्लाह, अगर मारे गए तुम अल्लाह के रास्ते में, औ मुत तुम या मर गए लेकिन वो हो अल्लाह का रास्ता, ला मगफिरा तुम मिनल्लाहि व रहमतुन, एक तरफ क्या है मगफिरत और अल्लाह की तरफ से और उसकी रहमत, ये एक तरफ लिख लें ठीक है, खैरुन बेहतर है, दूसरी तरफ लिखें मिम्मा यजमाउन, उससे जो वो जमा कर रहे हैं, यानी एक तरफ एक साइड पे क्या है मगफिरत बख्शिश और रहमत, दूसरी साइड पे क्या है तराजू के समझ लें, इमेजिन करें दो पलड़ी, दूसरी साइड पे क्या है जो कुछ भी वो जमा कर रहे हैं, मिम्मा यजमाउन, हर चीज जो दुनिया की वो इकट्ठी कर सकते हैं। लोग क्या क्या जमा करते हैं, पैसा है, कपड़े हैं, जेवर है, जायदादें हैं, बैंक बैलेंस है, जूते हैं, क्या क्या जो भी चीजें लोग जमा करते हैं, गाड़ियों का कईयों को शौक होता है वो गाड़ियां जमा करते हैं, जो कुछ भी लोग जमा करते हैं वो एक तरफ, यानी जिंदा है कोई तो जाहिर है चीजें जमा करता है, ये एक तरफ, और एक अल्लाह के रास्ते में चला गया, चाहे वो कत्ल हुआ है जंग में किसी में या बिस्तर पे उसको मौत आ गई, मगर था अल्लाह के रास्ते में, उसको क्या मिलता है मगफिरत और अल्लाह की रहमत, तो दूसरे पलड़े में वो डाल दो। तुम कहते हो हाय क्यों मर गया, हाय क्यों चला गया, हाय क्यों इस तरह हो गया, हालांकि उसको क्या मिल रहा है, क्या है एक तरफ मगफिरत और रहमत, दूसरा जिंदा है और उसके पास क्या है दुनिया जहान उसने जमा की हुई है, बेहतर कौन सा, दोनों पलड़ों में से बेहतर कौन सा है, ये बेहतर है अल्लाह ताला ने बता दिया, इक्वल भी नहीं है, ये नहीं कोई बात नहीं फिक्र ना करो वो भी तुम्हारे बराबर ही है, नहीं वो जो कुछ उसको मिला है ना वो कहीं बेहतर है इससे, जिसने अगर पूरी दुनिया भी जमा कर ली है, सारी दुनिया के खजाने इसके पास आ गए, तब भी जो कुछ उसको मिल चुका वो कहीं बेहतर है इस बंदे से जिसने सब कुछ जमा कर रखा है, कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या, अल्लाह की मगफिरत उसकी बख्शिश किसी को मिल जाए कि अल्लाह बख्श दे, और उसकी रहमत क्या है, अल्लाह की रहमत ही जन्नत है, और अल्लाह की रहमत में जो कोई आ जाए ना तो उसकी तो रहमत का अदना सा दर्जा भी किसी को मिल जाए तो उसके तो दिन फिर गए, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, उसकी रहमत के खजाने बहुत ज्यादा हैं, वो जर्रे बराबर भी किसी को रहमत दे दे तो उसके लिए तो सारी के सारी परेशानियां दूर हो गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम उसको समझते हो ये फेलियर है, आए मर गया बेचारा, हाय कितना जवान था और देखो कैसे, लेकिन अगर वो अल्लाह, मौत बड़ी बात नहीं है, मौत वो आनी है, बात बड़ी क्या है यहाँ पे, फी सबीलिल्लाह, ये है बड़ी चीज, इसको सर्कल करें और एक ब्रैकेट में करें ला मगफिरतु मिनल्लाहि व रहमतुन, एक ब्रैकेट में करें मिम्मा यजमाउन, ये इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, और मौत किस तरह आई, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में आई है। अल्लाह के रास्ते में कौन सी मौत होती है? जंग में अल्लाह की खातिर, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ना, वो भी अल्लाह की खातिर है। और कौन सा अल्लाह की खातिर होता है? अल्लाह के रास्ते में इंसान को कैसे मौत आ सकती है? मसलन कोई हज पे गया, उमरे पे गया, वो किस लिए निकला? वो कोई अपने काम से तो नहीं निकला, अल्लाह के रास्ते में था ना। इस तरह कोई मस्जिद जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के रास्ते में निकला है ना, उसको अपना कोई जाती बिजनेस के लिए तो नहीं जा रहा। इसी तरह एक और चीज है जो अल्लाह के रास्ते में है। हदीस में आता है, जो शख्स इल्म की तलब में निकलता है तो वो अल्लाह के रास्ते में शुमार होता है, यहां तक कि वापस लौट आए। यानी अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने के लिए जो निकला, वो भी अल्लाह के रास्ते में, उसको भी अगर कोई मार देता है, या उसको मौत आ जाती है बिस्तर पे, या उसको के साथ कोई हादसा हो जाता है, मगर वो अल्लाह के रास्ते में था ना, तो उसके लिए भी मग़फ़िरत और रहमत है। इसीलिए बाज़ उलमा ने ये कहा है कि ये भी शहादत का दर्जा है, जो इल्म की तलब के अंदर इंसान होता है उसको मौत आ जाए तो वो भी शहादत है, क्योंकि ये अल्लाह के रास्ते का काम है। चाहे वो फिर घर में ही मरे, मगर उसने अपनी जिंदगी इस रास्ते में लगाई हुई थी। तो चाहे अगर जंग में लड़ रहा है तब भी, अगर जंग के बगैर है तब भी, ये मिल जाना किसी को मग़फ़िरत और रहमत, ये तो बहुत बड़ी चीज है, उससे जिसको तुम सोचते हो कि बेहतरी किसमें थी अगर ये जिंदा रहता, बेहतरी किसमें थी अगर ये हमारे साथ होता। नहीं, उसको जो मिल गया है ना, ऐसे हदीस में आता है, बड़ी प्यारी हदीस है, बार बार इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब रूहों को अल्लाह ताला के यहाँ, जिन रूहों को अच्छे हालात मिल जाते हैं, यानी उनका वहां पे अंजाम अच्छा होता है ना, जिन रूहों का अल्लाह के पास, वो कभी वापस नहीं लौटना चाहती। यानी वो ये नहीं कहती रूहें, क्या ये अल्लाह मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं जाके उनका देख लूं बस, मैं बस यही कहती हूँ। वो रू ये नहीं कहती, कोई रू ये नहीं कहती, हाय मेरे काम अभी बड़े पड़े हुए थे, अभी तो मेरी जवानी थी, हाय काश मैं एक दफा जाके अपनी जवानी तो जी लूं। कोई रू ये नहीं कहती, हाय अभी तो मेरी शादी होनी थी, मेरे बड़े अरमान थे तो मैं एक दफा दुनिया में चली जाऊं, मेरी शादी तो मैं अपनी देख लूं। कोई रू नहीं ये कहती। सोचे, इमेजिन करें अपने उन प्यारों को जो ईमान पे, दीन पे दुनिया से गए, हम अच्छा उनके लिए अल्लाह के यहाँ उम्मीद रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, कंफर्म तो किसी का नहीं कहा जा सकता, मगर उम्मीद रखते हैं कि उनके अच्छे अल्लाह के पास दर्जात होंगे, अच्छे मकाम होंगे, अच्छे हालात होंगे, तो वो यकीन जाने वो कभी नहीं लौटना चाहते। कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो दुनिया की, कोई खुशी, कोई नेमत, दुनिया का कोई ऐसी लज्जत नहीं है जिसको पाने के लिए वो कभी चाहें कि हम वापस चले जाएं। इतना अच्छा उनको वहां पे मिलता है, नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं है। ये चीज कितना हौसला दे देती है इंसान को। हाँ, मगर अच्छे हालात हो वहां पे, आने की कौन तमन्ना करेगा? काफिर, काफिर कहेगा हाय काश मैं दुनिया में चला जाऊं, हाय काश मैं एक दफा चला जाऊं तो मैं कोई नई काम करूं। यहां पता है कौन कहेगा? अभी आपको बताऊंगी, आप इंशाल्लाह। एक और पर्सन है जो कहेगा मैं दुनिया में जाऊं दोबारा। तो यहां से पता चला कि असल चीज जिसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए वो ये है कि मौत अल्लाह के रास्ते में आए, तब सब सब वो गम और दुख और सब दूर हो गए। लगे रहे अल्लाह के रास्ते में, लगे रहे अल्लाह के रास्ते में, इस रास्ते को नहीं छोड़ना, ठीक है? मौत फिर कहीं पे भी आ जाएगी, उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, हादसे में आए, बीमारी में आए, किसी में, अल्लाह के रास्ते में जो थे, सुभान अल्लाह। तो बाज लोग ये सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ अगर सजदे में मौत आई है तो बस ये अच्छी है, सिर्फ अगर कुरान पढ़ते हुए आई है तो तब ये अच्छी है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसके सिवा भी आ जाती है और कोई इंसान अल्लाह के रास्ते में लगा हुआ है ना, सारी जिंदगी वो लगा है और मौत भी उसको उसी उसी रास्ते में आती है, तो वो भी अच्छा अंजाम रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदानी जंग में नहीं मौत आई, बिस्तर पे आई थी। देखिए अब सहाबा में से कितने सहाबा को हजरत खालिद बिन वलीद बिस्तर पे मौत आ रही है, लेकिन सारा वक्त अल्लाह के रास्ते में लगे हैं। तो जरूरी नहीं है कि इंसान कोई ऐसा ही काम कर रहा था तो फिर उसको मौत आए तो तभी अच्छी है, वरना बाकी सारी फेलियर है, ऐसी नहीं है बात। देखना यह है कि आपकी जिंदगी किस चीज में गुजर रही है। आखिर वक्त में अच्छा काम करते हुए आप दुनिया से जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई ऐसे ही हो। हो सकता है कोई बिस्तर पे ही फौत हो जाए, हो सकता है किसी गाड़ी में, हो सकता है किसी जगह पे, किसी अस्पताल में, लेकिन उनकी जिंदगियां कैसी गुजर रही थी ये तवज्जो देने की बात है। जिंदगी अल्लाह के रास्ते में थी कि नहीं थी? अगर थी ना तो फिर कोई गम नहीं है। फिर उसको जब चला गया उसने, उसको तो कभी दिल भी नहीं करता कि इस वापिस इस कैद खाने में आए, उसका नहीं दिल करता यहाँ पे आने को दोबारा, वहां पे खुश है वो। ये जो हम कहते हैं ना कि वो रूहें आती हैं दुनिया में, जी रूहें आ गई, और वह ऐसी कोई बात नहीं। वो जो जुमेरातों को आती हैं, घरों के चक्कर लगाती हैं, वो तो कहते हैं ये हदीस के मुताबिक वो तो दुनिया में नहीं कभी आना चाहता। वला इम्मुत्तुम औ कुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून। और इससे क्या फर्क पड़ता है अगर कोई कत्ल कर दिया जाए या वो बिस्तर पे मर जाए? तुम कहते हो कि हाय क्यों मर गए, हाय क्यों, सबका ठिकाना तो एक ही है, अल्लाह के यहाँ जमा होना है सबको, जिस शक्ल में भी मौत आई, वो किसी बीमारी से आए, वो किसी एक्सीडेंट से आए, वो किसी जंग में आए, जो किसी में भी आए, मंजिल सबकी एक है, वहीं पहुंचना। उसके पास पहुंचने से तो किसी सूरत कोई चीज नहीं रोक सकती। या अय्युहल इंसानु इन्नक कादिहुन इला रब्बिक कदहन फमुलाकी। इंसान तो अपने रब की तरफ चला हुआ है, एक एक दिन हमें अल्लाह से करीब कर रहा है। जिंदगी जितनी गुजरती जा रही, सोचा करें, हम सब ही आई थिंक डाउन द हिल तो होंगे, यानी अब हम अपनी कोई 20 साल का 25 साल का तो नहीं बैठा हुआ, बस आगे को 30 के बाद तो नीचे ही जाने लगते हैं, 40 के बाद बिल्कुल। तो उसके अंदर सोचा करें कि अब वो चीजें नहीं है कि अब कोई स्टार्ट नहीं हो रही लाइफ, अब रैप अप होने शुरू हो गई है। ओके, जब हमने कहीं से निकलना होता है, चलना होता है ना, जाना होता है, आप पिकनिक पे गए, आप खत्म किया तो सामान आप रैप अप करते हैं ना, आपने कहीं पे भी आप घूमने गए, आप चीजें समेटना शुरू कर देते हैं, तो ये अब समेटने का वक्त है जो 40 क्रॉस कर गया। सहाबा करम 40 पे सोचते थे कि अब बस अल्लाह के साथ, उसकी इबादत में और उसके साथ वक्त लगाने का ये अब जिंदगी है। हमें तो खैर 70-80 के भी होके नहीं होश आता, हमारे तो ये हालात हैं, फिर भी वक्त को जाया करते हैं, फिर भी वक्त को नहीं सोचते, नहीं ला इलल्लाह ही तो शरून, तुम चले हुए अल्लाह की तरफ, तुम जमा किए जाओगे वहां। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात बताई जा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बताई जा रही हैं कुछ, यानी ये क्यों बताई जा रही हैं? इसलिए क्योंकि जब ऐसे लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसकी वजह से आप सोचें कितना बड़ा नुकसान हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या बताया जा रहा है, और इसके बाद ईमान वालों को भी क्या बताया जा रहा है नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। फबिमा रहमत मिनल्लाह, ये अल्लाह की रहमत की वजह से ऐसा है कि लिनता लहुम, लिनता लीना से, लाम या नून नरम, आप नरम है इनके लिए, ये कि अल्लाह ताला की रहमत है आपके ऊपर है नबी, कि आप इनके साथ नरम हुआ। सुबहान अल्लाह, इससे पता चलता है किसी इंसान में अगर नरमी है ना, कोई बड़ा पोलाइट है, तो ये उसकी कोई बड़ी खूबी नहीं है। हाँ जी मैं बहुत पोलाइट हूं, मैं तो बड़ी काइंड हूं, मैं ये समझ लें कि अल्लाह की रहमत है आपके ऊपर। और जो सख्त है ना, जिसकी जुबान में सख्ती है, वो ये समझ ले कि ये अल्लाह की रहमत से दूरी है उसके लिए। ठीक है, सख्ती जुबान की कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। नरमी को अल्लाह ताला ने पसंद किया है, इसीलिए उसको अपनी रहमत कहा है, और ये अपनी रहमत अपने नबी को अता फरमाई है। तो इससे पता चलता है कि ये तो बड़ी पसंदीदा चीज है, किसी को मिल जाए तो बड़ी अच्छी चीज है। तो हदीस में आता है ना कि जिसमें ये क्वालिटीज होंगी उसके ऊपर अल्लाह ने जहन्नुम को हराम कर दिया, जहन्नुम में नहीं वो जा सकता। कौन है जो नरम है, नरमी रखने वाला, लोगों के साथ नरमी से पेश आने वाला, सख्ती नहीं हो जुबान के अंदर। और कौन है जो सहल हो, इजी गोइंग हो। बाज लोगों के साथ मामला करना इतना मुश्किल होता है, इतनी बहसें करेंगे, इतनी दलीलें देंगे, इतने झगड़े करेंगे, पर वो इंसान कहता है ला इनके साथ कैसे बात की जाए, डर लगता है उनसे बात करते हुए। वो इजी गोइंग नहीं होते, नरम हो नहीं होते, सहल नहीं होते। आपने भी देखा होगा ऐसे लोगों को जो कितने मुश्किल होते हैं उनके साथ डीलिंग करना, उनको हैंडल करना। हर एक यही सोच रहा होगा कि मैं तो बड़ी सहल हूँ, लेकिन अब ये तो दूसरों को पता होगा कि हम कितने सहल हैं। मेरे ख्याल में अपने अंदर तो हम सभी सोचते हैं मैं देखो बड़ी सहल हूँ, फलाना देखा वो कितना मुश्किल है उसके साथ डील करना। अब अल्लाह वालम लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, बाज लोगों के साथ बात करते हुए लोग डरते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, नरम थे, सहल थे आप भी लोगों के। और करीब, जो तीसरी क्वालिटी है करीब, यानी ऐसे नहीं है कि बस लगे बदे से रहना। ऐसे होते हैं ना कुछ लोग के बस सबसे नहीं हमने मिलना जुलना जी, बस हम बस अपने उसमें ही रहते हैं, करीब नहीं है लोगों से, एक्सेसिबल नहीं है लोगों के, वो लिए दिए रहते हैं बस। और उनका मिजाज ऐसा होता है ना कि मैं हर एक से क्यों बात करूं, हर एक से मैं नहीं बात करती। तो नहीं, वो लोग करीब होते हैं, तो ये यानी उनके अंदर आजी इतनी होती है ना, तो ये क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करनी है। और जी किसी को अल्लाह ताला ने दी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम होता है जिसको ये मिल जाए। अगर ये नहीं मिली हुई, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे नरम बना दे। नरमी में खैर है, इस घराने को अल्लाह ताला नरमी दे दे, अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ी अपनी रहमत दी है। वलौ कुंता फद्दन गलीज अल कल्बी लन फद्दू मिन हौलिक। ए नबी, अगर आप तंद होते, बद अखलाक होते, सख्त दिल होते, तो ये मुंतशिर हो जाते आपके आसपास से। ये आज जो सहाबा आपके ऊपर जाने निछावर करते हैं ना, इन्होंने आपके पास भी नहीं फटकना था। अगर आप ऐसे होते कि सख्त होते, बदमिजाज होते, और सख्त दिली, आप समझते हैं ना कि क्या होती है सख्त दिली, किसी के ऊपर रहम ना आना, किसी की कोई चीज के लिए उसके केयर ना करना, आई डोंट केयर। कई कई दिल भी मतलब पत्थर की तरह होते हैं, उनके अंदर नरमी नहीं होती, उनके अंदर किसी पे रहम नहीं होता, वो किसी के दुख को अपने कुछ समझते नहीं है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, नरम थे। ठीक है ना, एक दिन हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको प्यार करने लगे, उनको चूमने लगे, तो एक बद्दू था वहां पे, उसने कहा मेरे 10 बच्चे, मैंने कभी भी नहीं अपने बच्चों को प्यार किया इस तरह उठा उठा के। तो आपने फरमाया अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत ही निकाल दिया तो मैं क्या कर सकता। बास लोग ना अब तो नहीं ऐसा, अब तो बहुत वक्त चेंज हो गया है, लेकिन जो आप में से बड़ी उम्र के लोग होंगे उनको पता होगा कि गांव वगैरह के अंदर ये आदमियों के अंदर बड़ी वो होती थी कि मैं अपने बच्चों को उठा के प्यार करूं, दूसरे के बच्चों को कर लेंगे, अपने बच्चों को नहीं पूछेंगे, अपने बच्चों को। और आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हमने प्यार का इजहार कर दिया तो हमारे सर पे ही ना चढ़ जाए, नहीं बस इस तरह रखो डिस्टेंस के ऊपर इनको, बस हमें देखें तो कांपने शुरू हो जाएं, घर में एंटर हों तो उन इतने रोब में आ जाएं, बच्चे छुप जाएं अपने अपने कमरों में, ऐसा होना चाहिए, शेर की नजर से देखो। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे नहीं थे। ये जो हमारे मुहावरे बनाए हुए ना, मैं अक्सर कहती हूँ ये जो हमारा मुहावरा है ना, खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नजर से, बिल्कुल उलट है इस्लाम में इसे, बिल्कुल उलट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर की नजर से देखा नहीं और सोने के निवाले खिलाए नहीं। तो ये जो हमारे कल्चरल एक मुहावरे है ना, कभी कभी इतने बेवकूफाना है। होना क्या चाहिए, नरमी हो, और निवाला चाहे आप हलाल का सूखी रूखी जैसा भी खिला दो, शेर की नजर की जरूरत नहीं है भैया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, आपने कोई सोने के निवाले नहीं खिलाए। इन मोहब्बत बड़ी थी, उमामा थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी, कैसे वो बागी आती हैं तो उनको अपने कंधे पे उठा के बिठा लेते, कैसे अपनी बेटी फातिमा आती हैं तो उनके लिए चादर बिछा देते, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीलिंग करते थे। हजरत अनस हैं तो 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, छोटे बच्चे थे जिस वक्त आपके पास आए थे। तो कहते हैं इन सारी जिंदगी नहीं कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जितने साल में आपके पास रहा सारी जिंदगी नहीं कभी उन्होंने कहा कि ये काम तुमने क्यों किया या ये क्यों नहीं किया। हालांकि उनके नौकर थे एक तरह समझ रही है, उनकी माँ छोड़ गई थी कि ये आपकी खिदमत किया करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम करने के लिए ही तो थे, आपके खिदमत गुजार थे। वो नौकर होना भी बड़ी सआदत है जो नबी का नौकर बन गया। तो कहते हैं कभी आपने ये नहीं मुझे ये फरमाया, कभी किसी चीज के ऊपर गुस्सा करना या कभी किसी चीज के ऊपर करना तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे खादिम हमारे बारे में क्या कहेंगे ये पूछ के देखेंगे, क्या कहते हैं वो बेचारे, क्या बताएंगे, तो वैसे ही डरते होंगे। तो ये वो गवाही दे रहे हैं। अब इसी से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ कैसे थे, क्योंकि घर वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं किसी के बारे में। और हम भी सोच लें कि हमारे मिजाज के खिलाफ जब कोई बात होती है, आपको नहीं सिर्फ मैं कह रही हूँ, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, तो हमारे क्या हालात होते हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम इमेजिन करें, मतलब सारी चीजें छोड़ के आप सिर्फ इतना इमेजिन करें कि जिस हिंद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा का कलेजा चपा लिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी ये नहीं कहा कि तू नहीं अब इस्लाम ला सकती, इस्लाम लाएगी तो तेरे तो गुनाह माफ हो जाएंगे, पिछले दूर हो जा मेरी नजरों से। नहीं, वाहशी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को शहीद किया था, कितना बड़ा गम दिया था, उसको भी कलमा पढ़वा दिया। तो बहुत बड़े दिल वाले ये कर सकते हैं, बहुत बड़े दिल वाले, इसके लिए बहुत दिल कुर्दा चाहिए। चलो हमारे पास इतना बड़ा नहीं भी हो, कहीं तो हम माफ करने वाले हो, हम तो जिंदगी भर बात ही नहीं छोड़ते, जाने ही नहीं देते। आगे क्या कहा गया, फाफ वन हो ए नबी, आप छोड़ दें, इधर गुजर कर लें इनसे, यानी इनसे अब गलती हो गई है ना, इन सहाबा से वो उतर आए वहां से। अब ये नहीं कि बस इस गलती को पकड़ के ही बैठ जाना कि क्यों तुमने ऐसे किया, देखो अब कितनी शहादतें तुम्हारी वजह से ये हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं उनको कहा। अब खुद सोचे हमारे घर में एक प्लेट भी टूट जाए, इतना सा भी नुकसान हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं। कोई डेकोरेशन कोई बच्चा तोड़ दे, कोई कोई चीज गिरा दे कहीं, हमारी क्या हालत होती। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान था, एक फतह शिकस्त में बदल गई थी। सुबकी अलग, बातें सुननी अलग, एक मतलब एक एम्बेरसमेंट होती है ना, वो एक अलग थी। शहादतें वो कितना बड़ा नुकसान, उसकी तो कोई तलाफी नहीं हो सकती ना, कि इतने बड़े बड़े मतलब इतनी कीमती जानें चली गई। ये एक अलग गम, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा होंगी, तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। आप देखें ये तुम्हारी वजह से कहना ना, ये हम नहीं कभी छोड़ते, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने ये कहा था, तुमने ऐसे किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, आपको क्या फरमाया, फाफ़ुअन, आप भी उनको माफ कर दें। दो दफा पीछे आया ना, अल्लाह ने माफ कर दिया, हमने पिछले सबक में पढ़ा था, दो दफा अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने मोमिनों को माफ कर दिया, ताकि रहती दुनिया तक कोई उन पे उंगली ना उठाए कि ये लोग तो भाग गए थे उहद में, ये लोग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के चले गए थे, उनके लिए भी है। मैदाने जंग से भागना है कबीरा गुनाह था, जो नीचे उतर आए ये तो वो थे जो नीचे उतरे थे, जबले रुमाद पे इनकी ड्यूटी लगाई हुई थी, वो तो नीचे उतरे, उनसे भी एक गलती हुई, वो जो भागे उन पैनिक में वो भी एक गलती थी। सबको कहा इन सबको माफ कर दें, और सिर्फ माफ नहीं करें, सिर्फ माफ नहीं करें, सुभान अल्लाह, वस्तग़फिर लहुम, क्या शान है सहाबा कराम की। फिर कोई इनको अगर बुरा भला कहे तो कितनी बुरी ये बात है कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया आप इनके लिए बख्शिश मांगी है, वो अपने लिए तो बख्शिश मांगे ही मांगे, आप इनके लिए बख्शिश मांगे क्यों? इसलिए कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कबूल होती, दूसरी इंसान सिर्फ उसके लिए दुआ कर सकता है जिसके लिए उसके दिल में कोई बुराई ना हो। जिनके लिए दिल में बुराई होती ना, दिल नहीं करता उनके लिए दुआएं करने का, बद्दुआ ही निकलती है, दुआ तो नहीं निकलती ना, ये तो नहीं निकलता अल्लाह इनको माफ कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उनकी तरफ से साफ है, ये भी पता चल गया इससे कि आप उनके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह नाम में फरमाया है कि जब वो लोग आपके पास आए ना जो अल्लाह की आयात पर ईमान रखने वाले, फकुल सलामुन अलैकुम, तो आप उनको कहें सलाम, सुभान अल्लाह, यानी कितनी बड़ी शान पता चलती है सहाबा की। तो कोई उन पे उंगली उठाने से पहले ये देख ले कि कुरान पाक में सहाबा का मकाम और मर्तबा कितना बड़ा है, चाहे उनसे एक बड़ी गलती भी हुई, फिर भी जब अल्लाह ताला ने उनके बारे में ये कह दिया तो उसके बाद किसी के लिए ये जायज़ नहीं है कि उनके मकाम और मर्तबे को कम करने की कोशिश करे या उनके ऊपर कोई तान करे, उनके ऊपर उंगली उठाए। और फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, ए नबी, अब ये नहीं है कि देखें इनसे मशवरा किया था तो मशवरे में उन्होंने कहा था ना कि बाहर जाके लड़ना, सारा ओहद के तनाजुर में सोचें, अब उस बाहर जाने की वजह से शिकस्त हुई तो अब आइंदा के लिए तो हमने नहीं है आपसे मशवरा करना, हमने तो भुगत लिया भाई आपसे मशवरा करके, ये नहीं कहना। फिर भी है नबी इनसे मशवरे करते रहना है आपने, अल्लाह अकबर, ताकि कभी भी उनको ये एहसास महरूमी ना हो कि हाय हम हमसे गलती हुई थी ना, तो अब हमें कभी नहीं मशवरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए मशवरे, हालांकि नबी सल्लल्लाहु को मशवरे की क्या जरूरत है किसी से करने की, उनसे ज्यादा हिकमत किसके पास होगी, उनसे ज्यादा समझ बूझ किसके पास होगी, उनसे ज्यादा सही फैसला करने की कुव्वत किसके पास होगी। लेकिन आप देखें जगह जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे किए, जब इंसान मशवरा करता है ना तो मशवरा करने वाला कभी नामुराद नहीं होता। देखिए मशवरा करने वाला हदीस से पता चलता है कि कभी वो नामुराद नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में मशवरा किया कि हम लड़ें कि नहीं लड़ें, तब मुहाजरीन ने कहा था हम आपके साथ हैं, अंसार ने भी फिर कहा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही पूछते जा रहे थे तो अंसार फिर वो खड़े हुए, फिर उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ हैं, चाहे आप हमें कहेंगे समुंदर में जाके कूद जाओ तो हम वहां पे भी आपके साथ जाने को तैयार, हम मूसा अलैहि सलाम के साथियों की तरह नहीं है। इसी तरह जब अहजाब में आपको पता है जंगे जो खंदक थी उसके अंदर भी जो खंदक खोदने का मशवरा था वो किसका था, हजरत सलमान फारसी का, तो आपने मशवरा किया था उसमें भी, जब हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला पे एक तोहमत लगी तब भी आपने मशवरा किया था अपने सहाबा से। इसी तरह उहद में आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मशवरा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरे करते थे। मशवरे में फिर ये होना चाहिए जब इंसान मशवरा करे तो एक तो किसी ऐसे इंसान से मशवरा किया जाए जो खैरख्वाह हो, दूसरे जो फहम वाला हो समझ वाला हो, हर एक से मशवरा नहीं करने खड़े हो जाना। मिसाल के तौर पे कोई औरत है उसको कोई बीमारी है, वो गैर मुस्लिम डॉक्टर से पूछती है मैं रोज़ा रख लूँ, वो कहेगा नहीं नहीं आप नहीं बिल्कुल रख सकते, वो भाई उसको रोजे का क्या पता, वो मुसलमान नहीं है उसको नहीं, आपने मशवरा भी करना है तो किसी उससे करें जिसको इस बात का समझ हो। हर अहरे गहरे से हर एक बंदा जो स्ट्रीट पे जा रहा है उससे मशवरा नहीं करना, जो समझ बूझ वाला भी हो, जो आपका खैरख्वाह भी हो, ठीक है। और मशवरा जब करें मशवरा असल में करता वही है जिसमें तकब्बुर नहीं होता। बहुत सारे लोग तो मशवरे को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मैं मशवरा करूं, मुझे मशवरे की क्या जरूरत है? मैं खुद नहीं सही फैसला कर सकती, छोड़ो मैंने इनसे नहीं पूछना। तो तकब्बुर जिनके होता अंदर होता ना, वो नहीं मशवरा करते। तो मशवरे में क्या होता है, इंसान दूसरे की भी राय पूछता है। अब जरूरी नहीं होता कि मशवरा जो है मेजॉरिटी का जो हो वो ही माना जाए, बल्कि जिसको मशवरा दिया जाए वो देख सकता है कि मैंने किसकी बात। एक सहाबी ने सिर्फ फरमाया था, हजरत सलमान फारसी ने, कि खंदक खोदी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मशवरा कबूल फरमाया। तो इन द एंड मशवरे में किसकी अथॉरिटी होती है कि वो फैसला करे कि किसका मशवरा मानना है किसका नहीं? वो जो बंदा जो मशवरा मांग रहा है उसकी अथॉरिटी होती है। ये नहीं कि मशवरा देने वाले ये कंडीशन लगा दें कि अब हमने मशवरा दिया है तो अब हाँ आप उन्हें हमारा मशवरा मानना है, अगर नहीं मानना तो फिर हमें ना बॉदर करें, फिर हमारे पास नहीं इतना टाइम है कि आपको मशवरे देते। फिर नहीं, आपसे कोई मशवरा मांगे तो मशवरे को कहा गया हदीस में कि ये भी अमानत है, ये भी अमानत है, इसमें खयानत नहीं करनी। इंसान वही मशवरा दे जो सही मशवरा है, ये नहीं कि अगर इस तरह का मशवरा दिया तो ये नाराज ना कहीं हो जाए। मैं कोई आपसे मशवरा मांगे और आप कहें कि बस ऐसा ही मशवरा दूं जो इसकी इसको खुश करने वाला, नहीं, जो सही बात है उसका मशवरा दे। और जिससे मशवरा मांगा गया अगर उसके मशवरे के मुताबिक नहीं किया गया तो वो बाद में ये ना कहे कि देखा ये नुकसान हुआ ना इसलिए हुआ, आपने तो हमारा मशवरा ही नहीं माना। बहुत सारे लोग इस तरह सिर्फ ताने देते रहते हैं। फिर अब देखिए, मसलन किसी ने मशवरा दिया, वो बेचारा जिसने लिया उसने नहीं इसका मशवरा मांगा माना, और आगे इसका नुकसान हो गया। जब नुकसान हुआ तो फिर उसको मौका मिल गया कि वो कह रहा है देखा मैंने कहा था ना आपको, नहीं किया था ना मेरे कहने के मुताबिक, तो भुगतो अब। नहीं, आपसे उसने मशवरा ही मांगा था, अब उसकी मर्जी है, अब उसको ताने देने का कोई जवाब नहीं बनता। ठीक है, अब जिसने मशवरा दे दिया, जब उसने मशवरा दे दिया ना तो उसका काम खत्म हो गया। वो नाफिज होता है या नहीं होता वो उसका काम नहीं है। अच्छा, अब एक और बात यहां से हमें क्या पता चलती है, वो ये पता चलती है मशवरे से मुतालिक चीजें बहुत अहम है, क्योंकि जिंदगी में हमसे कोई मशवरा करता है या हम भी कभी किसी से जाके मशवरा करते हैं। अब हमने किसी से मशवरा किया, उसने जो मशवरा दिया हमने उसके मुताबिक किया, अब कोई नुकसान हो गया तो अब हम जा जाके उसको कहें तुमने दिया था ना ये मशवरा, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। नहीं, ये भी गलत है। तुमने ये रिश्ता बताया था ना, तुमने कराया था ना ये रिश्ता, तुमने कहा था यहाँ कर लो, तो देखो अब हमारा क्या हुआ। तो इस तरह से नहीं कर सकते। क्या वो एक मशवरा देने वाला ही है, वो अपनी समझ बूझ से मशवरा दे रहा। अब इसके बाद वो तो सारी जिंदगी के लिए कान पकड़ लेगा कि मैं तो अभी नहीं कभी देता। अगर यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही करते कि उनको उनकी बहुत ज्यादा उनको बुरा भला कहते और उनको ताने देते और उनको ये कहते, तो वो कभी दोबारा मशवरा देने के काबिल ही ना होते, उनका तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए ये नहीं करना। तो मामलात में कौन से मामलात हैं जिनमें मशवरा करना चाहिए? फिल अम्र, यानी जहां पे अहम फैसला हो, जैसे मसलन हुकूमती फैसले हैं या ऐसे कोई और अहम जिंदगी के फैसले हैं, तो उसमें मशवरा कर लेना बेहतर होता है। एक मशवरा वो भी होता है जो हम अल्लाह ताला से करते हैं, और एक मशवरा शूरा जिसको कहते हैं, और इस नाम पे सूरत भी है, एक पूरी ईमान वालों की एक सिफत बताई गई है कि वो मशवरा करते हैं। तो सूरह शूरा है कुरान पाक में। इससे मशवरे की अहमियत पता चलती है। ये कोई ऐसी मामूली सी बात नहीं, देखें कितनी जिनको हम छोटी छोटी बातें समझते हैं उनकी भी किस तरह से कुरान पाक ने उनकी ताकीद फरमाई है। इससे हमारी जिंदगियां बेहतर होती हैं। बहुत दफा मशवरा कर लेने से इंसान बेहतर डिसीजन पे पहुंच जाता है। तो एक मशवरा अल्लाह ताला से भी होता है, और वो मशवरा कैसे होता है, वो इस्तखारे के जरिए होता है। इस्तखारे के बारे में भी आज हमारे बहुत ही कॉन्सेप्ट ही उलट हो चुका है। इस्तखारा करेंगे तो बस कोई ख्वाब आनी चाहिए। अब ख्वाब नहीं आई तो अब हम क्या करें? ख्वाब समझ नहीं आ रहा, ख्वाब का मतलब पूछने चले। देखिए ख्वाब के ऊपर तो वो डिपेंड करती है ना, अब ये मशवरा कैसा होता है कि भाई आपने मशवरा दिया, नहीं ये आपका मशवरा गलत निकला, ये आपका मशवरा सही निकला, ऐसा तो नहीं कुछ होता ना। लेकिन इस्तखारे को हम कहते हैं इस्तखारा गलत निकला, इस्तखारा सही निकला, तो निकलने का क्या मतलब है? वो तो आपने अल्लाह से मशवरा किया, अगर वो काम अच्छा होगा आपके लिए तो आपके लिए अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा कर देगा, उसके लिए दरवाजे खोल देगा, अगर नहीं वो अच्छा होगा तो अल्लाह ताला उसके दरवाजे बंद कर देगा, उसमें रुकावटें आएंगी, मुश्किलात आएंगी। हो सकता है ख्वाब आ जाए, उससे उससे भी कोई इंडिकेशन आपको मिल जाए, दिल मायल हो जाए, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो एक इस्तखारा करके अल्लाह से भी मशवरा करना चाहिए और इंसानों से भी मशवरा कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा अब हमें यहां से क्या चीजें पता चली? एक, नंबर वन, नरमी। नरमी इतनी अहम चीज है कि उसकी वजह से बहुत सारी खैर इंसान को मिल जाती है। आप देखते हैं जिन लोगों की जुबानों में सख्ती होती है उनसे लोग करीब बैठना भी नहीं चाहते, और यहाँ पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बता दी गई, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर नबी अलैहिस्सलाम सख्त होते तो सहाबा उनसे भाग जाते, तो मैं और आप अगर सख्त होके दीन के काम करेंगे हमारे पास बैठेंगे लोग क्या? ये एक दाई दीन का किरदार है और इस किरदार को हमने भी अपनाना है अगर हमें दीन का कोई काम करना है। तो दूसरों से ना एक्सपेक्ट करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं शिकायत करते नजर आ रहे कि ओ वो बद्दू आया, उसने तो मेरी गर्दन में वो चादर डाल दी और देखो उसने ऐसे मेरे साथ किया। जब उसने चादर डाली और खींची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा उसको, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम थे। हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं बस वो हमारे से नरम हो, हम तो अगर नहीं वो नरम होते तो हम तो सख्ती होंगे ना फिर। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसनद अहमद में रिवायत है कि हजरत अबू उमामा का हाथ पकड़ के फरमाते हैं, ए अबू उमामा, बाज मोमिन वो हैं जिनके लिए मेरा दिल तड़प उठता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इतना नरम था कि नबी अलैहिस्सलाम का दिल तड़प उठता था बाज मोमिनों के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सिफात हैं ये पिछली किताबों में भी आई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नहीं थे, आपका कलाम सख्त नहीं था, आप बाजारों में शोर मचाते नहीं फिरते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई का बदला बुराई से देने वाले नहीं थे, दरगुजर करने वाले थे, माफ करने वाले थे। तो ये वाली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी खसूसियात है ना, ये तौरात में भी है। तो इससे हमें पता चलता है हमने माफ करने वाला भी बनना है, दरगुजर, जाने दें, मशवरा कर लिया करना है लोगों से। कितनी प्यारी क्वालिटीज हमें पता चलती हैं। फ़ाइदा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह, फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें, अब आपने ये इस्तखारा भी कर लिया, आपने लोगों से भी मशवरा कर लिया, फिर उसके बाद आपने इरादा कर लिया कि ठीक है हम ये काम करते हैं, अब इसके बाद डबल माइंडेड ना होते जाए, हाय पता नहीं करूँ कि नहीं करूँ, हाय पता नहीं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, हाय पता नहीं ऐसे स्टेप उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ, नहीं, फिर तवक्कल अल्लाह, फिर बस अल्लाह के ऊपर भरोसा करें और उस काम को कर ले। तवक्कुल क्या होता है? तवक्कुल है अल्लाह ताला के ऊपर इंसान का भरोसा होना, ट्रस्ट होना कि अल्लाह मेरे लिए अच्छा ही करेगा। आप तवक्कुल भी एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि इंसान को जब तवक्कुल करना आ जाए ना तो फिर वो उसके दिल को सकून आ जाता है कि अल्लाह के सुपुर्द उसने, जिसको हम कहते हैं ना अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना, ये है तवक्कुल। तवक्कुल ये है, जैसे किसी ने कहा कि तवक्कुल ये है कि बंदा अल्लाह के सामने ऐसा हो जाए जैसे गुसल देने वालों के हाथों में मुर्दा होता है, जिस तरह चाहे उसको उलटता पुलटता है ना, कभी गुसल अगर आपने किसी को दिया हो तो जिधर को आप उसको मोड़ेंगे वो बेचारा मुर्दा है, उसने क्या कहना, उधर को मुड़ता चला जाएगा। इंसान इस तरह अल्लाह के हाथों में हो जाए कि अल्लाह मुझे जिधर चलाएगा मैं उधर चलूंगा, अल्लाह जो मेरे लिए फैसला करेगा बस उसके अंदर ही बेहतरी है। मैंने अल्लाह पे भरोसा किया। मगर तबक्कुल का ये मतलब हरगिज नहीं है कि इंसान सबब ना इख्तियार करे। सबब जरूर इख्तियार करना, ठीक है, बल्कि इस चीज को अप्रिशिएट किया गया कि सबब इख्तियार करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, मैं ऊंटनी को बांध के तवक्कुल करूं या उसको खोल के तवक्कुल करूं? बांध के मतलब क्या? बांध दिया, अपनी कोशिश कर ली, फिर अल्लाह पे भरोसा है कि अल्लाह अब हिफाजत करेगा, मेरा बांधने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह हिफाजत करने वाला। या फिर खोल दूं कि खोल दिया, उसको जितना मर्जी जाए, मेरा तो अल्लाह के ऊपर भरोसा है, वो खुद ही इसको मेरे तक वापस ले आएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया तो खोल दो ना, तुम्हें अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो खुद ही इसको ला देगा वापस। आपने क्या फरमाया, क्या जवाब दिया? फरमाया उसको बांध के तवक्कल करो। फिर मैंने आपको बताया था जंगे उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जिरे पहनी थी, और फतेह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर पर खोद पहनी हुई थी, यानी जो हेलमेट होता है पूरा, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्ज के अंदर दवा भी लगवाई थी, जैसे आप कहें इंजेक्शन जिसको कह सकते हैं। तो तवक्कुल ये नहीं है कि हमने कोई दवा नहीं लेनी, मेरा बस अल्लाह पे भरोसा, उसने मगर मुझे ठीक करना होगा तो कर देगा, मुझे मैं तो दवाई करनी नहीं, मैंने तो ट्रीटमेंट कराना ही नहीं, मेरा अल्लाह पे भरोसा है, मैंने तो बस सड़क पे लेट जाना है, तो जिस गाड़ी ने आना होगा मुझे मार देगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, तो अल्लाह ने जिंदगी और मौत जो लिखी हुई हो तो है ही। ये नहीं है तवक्कुल, इसको गलत नहीं समझे। तवक्कुल है खुद आप पहले काम करें, खुद आप पहले इस असबाब इख्तियार करें। कोई कहता है जी मैं बस अल्लाह ने जी रिस्क जितना लिखा हुआ है किस्मत में वो तो मिलना ही है, अब मैं क्यों जाके नौकरियां करूं, मैं क्यों अपने आप को इतना खपाऊं? हालांकि अल्लाह ताला ने उन लोगों की तारीफ फरमाई है जो रिस्क के हलाल के लिए जमीन में सफर करते हैं। आप देखें सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम नमाज पूरी हो जाओ तो जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह ताला ने उसको अपना फजल फरमाया। सुफियान सॉरी ताबई हैं, कहते हैं जब तुम इबादत करने का इरादा करो तो देखो घर में गंदम है या नहीं, अगर घर में गंदम है तो इबादत करो, वरना पहले तुम गंदम की तलाश में जाओ फिर अल्लाह की इबादत करो। यानी ये नहीं कि आप अल्लाह अल्लाह करने लगे, मैं मुसल्ले पे बैठे, ये होश ही नहीं, घर वाले खाएंगे क्या, पियेंगे क्या, खाना है नहीं है, हाँ हमने नहीं कहीं जाना, कहीं छप्पड़ फाड़ के कहीं से आ जाएगा और अल्लाह ने देना होगा तो दे देगा, नहीं तुम जाओ, कहते हैं जाके तुम कस्बे हलाल भी इबादत है, हलाल कमाई के लिए कोशिश करना वो भी इबादत है। और आपने पढ़ा है पहले सूरह बकरा में, वतज़व्वदु फइन्ना खैरा ज़ादे तक्वा, सफर के लिए ज्यादा राह ले लो, ये नहीं कहा तुम कोई बात नहीं हज पे निकल जाए करो, अल्लाह के रास्ते में हो, अल्लाह खुद ही तुम्हें खिलाए पिलाएगा। पहले जमाने में लोग ऐसे ही करते थे ना, वो क्या करते थे, वो कहते थे हम हज के लिए जा रहे हैं, बस तो कुछ ले जाने की क्या जरूरत है, बस हम अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर रहे हैं, वहां पे जाके लोगों से मांगना शुरू कर देते थे। तो तबीयत कि नहीं, आप ज्यादा राह लेके जाओ, अपना खाने पीने सबका इंतजाम करके जाओ। तो ये एक और जगह पे आता है शिब अल ईमान में कि इब्राहिम खवास उन्होंने कहा कि तवक्कुल के मैनर्स जो हैं, आदाब जो हैं, उनमें तीन चीजें हैं। कहते हैं काफले के साथ जाओ तो सफरे खर्च लेकर जाओ, ये नहीं कि आप जा रहे हैं सफर पे तो अब लोगों से मांगने शुरू कर दें, मेरे पास तो खत्म हो गए पैसे, मैं क्या करूं। कश्ती में सफर करो तो सफरे खर्च से सफर करो, मजलिस में बैठो तो अपना तोशादान लेके बैठो, यानी आप अपने खाने पीने का अपना लंच बॉक्स लेके बैठो, ये नहीं है कि आप फिर उसके बाद लोगों से मांगो, ठीक है। तो ये तवक्कुल नहीं होता, हाँ कोई दे ही देगा, हाँ अल्लाह ने खिलाना है, हाँ ये हो जाए, ये नहीं होता, ठीक है। तो इससे हमें बहुत सारी बातें देखें, हालांकि कहने की रोजमर्रा जिंदगी की बातें, ये कुरान हमें उनमें भी गाइड करता है, कितनी अच्छी गाइडेंस हमें देता है। आपने जिंदगी गुजारनी कैसे, हमें तो सारी जिंदगियां गुजार देते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमने करना क्या है, सारी जिंदगियां गुजर जाती हैं इसी चीज के अंदर कि हमें जिंदगी की समझ नहीं आई होती चलना कैसे है इसमें। तो अच्छा एक बात और मशवरे के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई अपने भाई से मशवरा कर ले तो उसे चाहे कि भली बात का मशवरा दे। देखें जो मशवरा देने वाला है ना, जैसे मैंने बताया, तो इस हदीस से भी, इब्ने माजा की इस हदीस से पता चल गया कि हमें मशवरा देते वक्त समझ लेना चाहिए कि ये अमानत है मेरे पास, ऐसे नहीं है कि मैं जो मर्जी मुंह में आए तो वो बोल दूंगी, ठीक है। अमानत में खयानत नहीं करनी। तो और जब पुख्ता इरादा हो जाए, किसी ने मुझे कहा हमने इरादा कर लिया फलां जगह मूव होने का, उनका सारा कुछ हो गया, वहां पे जॉब भी हो गई, वहां पे घर का भी इंतजाम हो गया, अब वो मूव करने वाले तो कह रही है अब मुझे, मैं डबल माइंडेड हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं, मैंने कहा अब नहीं डबल माइंडेड हो, बस अब आपने इरादा कर लिया, अब अल्लाह पे भरोसा करो। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद में, अब जब इरादा कर लिया था, गए जीरा पहन के आ गए, अपने हथियार लेके आ गए, अब बाहर निकले तो अब उन्होंने कहा ओहो अब हम सोच रहे हैं कि हमने तो नहीं आपको कहीं फोर्स कर दिया कि बाहर जाके लड़े, तो हम कहते हैं चलें ठीक है जैसे आपकी मर्जी है, आप इसमें अब मदीना में रह के ही अब हम लड़ लेते। आपने फरमाया नहीं अब नहीं, अब जब बात हो गई है ना तो अब नहीं, एक रसूल के लिए ये नहीं है जायज कि अब वो एक दफा हथियार पहन ले तो फिर अब उसके बाद फिर आप सोचने बैठ जाए अच्छा आप करें कि नहीं करें, बस फैसला कर लिया ना अब उस पर जम जाए, फिर आप अल्लाह पे भरोसा करें, शेकी ना हो। बाज लोग सारे जिंदगी शेकी ही रहते हैं, कोई काम ही वो स्टेबल होके कर ही नहीं सकते, या तो पहले अच्छी तरह मशवरा कर ले, अच्छी तरह सोच समझ ले, उसके बाद नहीं फिर उसको उसके अंदर डबल माइंडेड हो। एक और हदीस में आता है कि जो शख्स मशवरा करने के बाद किसी काम का इरादा करे और उसे करने या ना करने का फैसला कर ले, तो अल्लाह की तरफ से उसको सही और मुफीद सूरत की तरफ हिदायत मिल जाती है। क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से, इंसान यही सोच के करे कि अल्लाह का हुक्म है, मोमिनों की ये खसूसियत है कि वो मशवरा करते हैं, तो मुझे भी मशवरा कर लेना चाहिए। ठीक है, हाँ ये बात वो अलग है जो बात मैंने आपको कही कि किससे आपने मशवरा करना है। तो इन अल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है, कि जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं।